ओम शांति। हम सब के बीच परम श्रद्धे आदरणीय राजू भाई जी पहुंच चुके हैं। हम सब उनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। सरल चित, प्रकृति चित, माया चित, दिल तक तनशीन बाप दादा के और हमारी आदरणीय दादियों के विश्वास पात्र सदा हाजी का पाठ पक्का करने वाले आदरणीय भाई साहब, जो हम सब के बीच, जो हम सब ब्राह्मणों का प्राण है, ऊर्जा है, वो है मुरली। आप सब जानते हैं, राजू भाई जी को जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि सबके पास तो मुरली आनी है और वो मुरली हम सब के पास भेजने वाले स्लोगन, वरदान, अव्यक्त इशारे, जिसके कारण ही हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, जिसके बिना हमारा ब्राह्मण जीवन नहीं चल सकता है, वो समय से हमारे पास भेज देते हैं। कभी आपने देखा मुरली लेट होती है? होती है, कभी नहीं होती। समय से पहले ही हमारे आदरणीय राजू भाई जी हम सब के पास हमारा भोजन भेज देते हैं, जिनके लिए मैं यही कहूं, रूहानियत के दर्शन होते हैं चेहरे से और ज्ञान की निर्मल धारा बहती है वाणी से, और प्रकृति भी खुश है आपकी सेवा से, और सभा में हम सम्मान करते हैं दोनों हाथ की ताली से। आपका जन्म कानपुर के पास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। 1972 से आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने सिंधी भाषा सीखकर सन 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। मुरली में सार, वरदान, स्लोगन, अव्यक्त इशारे आते हैं, उसकी सेटिंग आप ही करते हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, जिसके आधार पर ही देखें हम कितना मुरली का सार स्लोगन निकलता है। और भाई साहब तो बाबा की मुरली चलती थी और तुरंत टाइप करके सवेरे सवेरे हम सबको मुरली दे देते थे, इतनी फास्ट सेवा करते थे। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ साथ टाइप करके शीघ्र अतिशीघ्र विश्व के कोने कोने में पहुंचाने में आपका विशेष योगदान, सतत ज्ञान अध्ययन तथा राज्यों की गहन अनुभूति कराने के फलस्वरूप आप अपने क्लासेस प्रवचनों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान विना ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेक पुस्तकें आपने लिखी। राजू एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। शाश्वत योगी खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का कुशल संचालन किया। मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि का कार्य भी आपकी देखरेख में चल रहा है। मुख्यालय से प्रतिमास निकलने वाला पत्र पुष्प आप ही प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार भी आप करते हैं। अभी तो हमारी दीदियां हैं और दीदियां ही दादी के समान है, उनकी तरफ से भी पत्र व्यवहार आप कर रही है। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आपने विश्व भ्रमण करके विश्व के पांचों खंडों यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया तथा विभिन्न रेडियो, टेलीविजन इंटरव्यूज द्वारा ईश्वरीय सेवा की गति प्रदान की है। आज आपके क्लास का विषय ही है अचानक और एवर रेडी बनने की तैयारी। हम सबको सुनाएंगे आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सब बच्चों को सदाएव रेडी रहने की बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं। आप सभी अपने आप को एवर रेडी रखते हैं? अचानक के पेपर में पास होने के लिए हर बच्चे को एवर रेडी रहना है। और उसके बीच में एक शब्द और बाबा देते हैं, बहुत काल का अभ्यास। ऐसे नहीं हम कहें हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन अगर अभ्यास नहीं होगा तो अचानक कोई बात हो गई तो उस समय फेल हो जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर विषय है। और वर्तमान समय कलयुग की अंतिम वेला में हम सबको इस बात पर बहुत बहुत ध्यान देना है। हमारी मीठी मातेश्वरी मम्मा हमेशा एक बात कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए वो सदा एवर रेडी रही, किसी समय भी बाबा बुलाए हम तैयार हैं। साकार ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को ऐसा तैयार किया कि शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा कभी भी निकल सके। उन्होंने गुप्त रीति से अशरीरी बनने का अभ्यास किया। शरीर में है आधार लिया, कर्म किया और न्यारे हो गए। इसलिए बाबा भी कैसे अचानक सब बच्चों के बीच से सेकेंड में ही छुट्टी लेकर के वतन पहुंच गए। किसी को भी पता नहीं था 5 मिनट पहले भी कितनी अच्छी बाबा मुरली सुना रहे हैं, बच्चों को बहला रहे हैं, अनेक शिक्षाओं से सजा रहे हैं। और गेट पर आकर के विदाई भी ले रहे हैं। बाबा की मुरली जब पूरी हुई 18 जनवरी 69, 8:30 बजे से 9 बजे तक बाबा ने करीब 35 मिनट मुरली सुनाई। और उसके बाद गेट पर आकर के नमस्ते कह करके अच्छा बच्चे छुट्टी विदाई। किसी को ये आभास नहीं हुआ कि बाबा ये शब्द क्यों उच्चारण कर रहे हैं। और कमरे में आए जैसे कोई ट्रांस में जाती ना बहने, ऐसे ऐसे दृष्टि देते देते दादी जी को ऐसे दृष्टि दे रहे हैं, हाथ में हाथ है। कर्म भोग था, थोड़ी सी हार्ट की तकलीफ तो बाबा को हुई, दर्द हुआ, लेकिन पता नहीं चलने दिया, ऐसे धीरे से सेकंड में निकल गए। मालूम है बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, तुम अपना अनुभव सुना करके आओ। तो कुछ दिन के बाद संदेश ही, जब 13 दिन के संदेश लग रहे थे, भोग लग रहे थे, तो उस दिन एक दिन बाबा खुद ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आए और बच्चों के प्रश्न का उत्तर दिया कि कैसे कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई। इतने सब बच्चे सन्मुख थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो अशरीरी बनने का अभ्यास किया था, बहुत काल से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन करके रहे, उन्होंने अंतिम पेपर को सेकंड में पास कर लिया, नहीं तो लोगों को शरीर छोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, छूटता ही नहीं है, कहीं भी थोड़ा भी अटैच होगा तो आत्मा जैसे फंस जाती है शरीर के अंदर। तो बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे अचानक के पेपर में पास होने के लिए एवर रेडी रहना। लेकिन अचानक क्या होगा, क्या शरीर छूटेगा? सिर्फ तीन बातें मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले वर्तमान समय ब्राह्मणों के आगे किसी न किसी प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। जो स्टूडेंट लाइफ में हैं उनके सामने अगर कोई परीक्षा आती है तो उस परीक्षा को पार करके, पास हो करके वो क्लास आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ाई की ही परीक्षाएं आती, जो कुछ पढ़ा है उसी की परीक्षाएं आती हैं। और बाबा ने हम सबको कितना पढ़ाया है, पढ़ा ही रहा है। साकार बाबा की सभी मुरलियों में चारों सब्जेक्ट को बाबा ने बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक हम सबके सामने स्पष्टीकरण किया है। ज्ञान, समझ, योग, कैसे बाबा से करंट लो, शक्तियां लो, दिव्य गुणों की धारणा और सेवा। आज भी सेवा के लिए एक बहुत सुंदर बात बताई बाबा ने, हरेक अपने आप से पूछना, क्योंकि वाचा सेवा का तो बहुत अच्छा अभ्यास है और ड्रामा अनुसार अभी तक भी वाचा सेवा करने के चांस मिल रहे हैं। बीच में थोड़ा समय ऐसा आया था जो लगता था कि अभी वाचा सेवा बंद हो जाएगी कोविड के समय, लेकिन उसके बाद फिर से खुला और अभी भी खूब सेवाएं हो रही हैं। लेकिन आज के वरदान में आप सबने नोट किया होगा, बाबा ने कहा बच्चे सब साधन समाप्त हो जाएंगे। जो आप अभी टेलीफोन से, कई साधनों से, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, अनेक साधनों से साइंस के सेवाएं कर रहे हो, ये सब साधन फेल हो जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में केवल वायरलेस सेट काम आएगा, ये साइंस वाला वायरलेस नहीं। हम सब की जो वॉइसलेस स्थिति है वो वायरलेस का काम करेगी। निर्विकारी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, जिसको बाबा संपन्न स्थिति कहते हैं, अंतिम सेवा का वो स्वरूप है। और हम सब ब्राह्मणों को इस सेवा के लिए रेडी रहना चाहिए कि हम अचानक मान लो सब प्रकार की सेवाएं बंद हो जाएं, तो क्या ऐसी वायरलेस स्टेज बनी है जो एक सेकंड में बाबा की शक्तियां लें और दूर दूर तक जो आत्माएं पुकारें, दुखी हों, परेशान हों, उनके लिए सहारा बने, उनको मदद कर सकें, सहयोगी बन सकें, उसके लिए वॉइसलेस स्थिति में कहाँ तक हम तैयार हैं, एवर रेडी हैं? एक है सिर्फ बाह्य पवित्रता की स्टेज, ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं, शुद्ध अन्न खा रहे हैं, लेकिन एक आंतरिक मानसिक स्वच्छता, पवित्रता, जिसके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष भाव न हो, किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव विचार न चले, बहुत सकारात्मक चिंतन से आत्मा भरपूर रहे, बहुत ऊंची वॉइसलेस स्टेज है वो। हर आत्मा निर्दोष है। इस ड्रामा के अंदर हम सब इस ड्रामा के गुहे रहस्य को समझकर उसी दृष्टि से अगर हम आत्माओं को देखते हैं तो हम बहुत ऊंची स्टेज अपनी बना सकते हैं, जिस स्टेज के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसी वॉइसलेस स्टेज हो जो अंतिम सेवा में आप मदद कर सको, सर्व आत्माओं को आप मुक्ति धाम का रास्ता दिखा सको। बाबा ने हम सबको जो अचानक का पाठ पढ़ाया तो किसी भी प्रकार के पेपर में परीक्षाओं में हम सहज पास हो जाएं। परीक्षाएं तो अचानक ही आती और बाबा ने तो परीक्षा का समय भी बता दिया, कितना समय है, 1 सेकंड का पेपर है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अंतिम काल में अंत समय में कोई भी देहधारी याद ना आए, कोई भी वस्तु पदार्थ संस्कार अपनी तरफ खींचे नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, तो पास हो जाएं। अंत मति सो गति, तो अंतिम पेपर में पास होने के लिए हम सबको बहुत काल से यह अभ्यास करना है। हर एक आत्मा के साथ पाठ बजाएं, सेवा करें, लेकिन कोई भी आत्मा से स्पेशल ऐसा स्नेह न हो जो लगाव का रूप ले ले। क्या हम सभी इस बात को सूक्ष्म रीति से चेक कर सकते हैं कि हम हर प्रकार के लगाव से, झुकाव से, प्रभाव से मुक्त आत्माएं बन गई हैं? एवर रेडी तो तब कहेंगे जब न शरीर का, देह का लगाव रहे, न संबंधों का लगाव रहे, न पदार्थों में लगाव रहे, न किसी की विशेषताओं में। कई बार दूसरों में लगाव नहीं रहता, अपनी विशेषताओं से भी लगाव हो जाता, अपनी सेवाओं से भी लगाव हो जाता। इस सेवा के बिना तुम नहीं रह सकते। लेकिन जो एवर एडी आत्माएं हैं, जैसे बाबा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, मुरली के अंदर हलवा बनाने वाले जानते हैं, जब हलवा पकने पर आता है, पक जाता है तो नीचे तला छोड़ देता है, बिल्कुल कहीं पर भी टच नहीं करता। ऐसे ही अगर हम समझते हैं कि हम एवर रेडी हैं तो देखना कहीं तला पकड़ा हुआ तो नहीं है, किसी से भी लगाव तो नहीं है, झुकाव तो नहीं है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संस्कार, कोई सेवाएं अगर खींच रही अपने तरफ तो हम कैसे कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं। अंतिम बुलावा हो तो वो आत्माएं या वो साधन या सुविधाएं या शरीर अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए बहुत काल से अशरीरी बनने का बड़ा गुप्त अभ्यास चाहिए। योग में बैठें और 1 सेकंड में इस शरीर से न्यारे हो जाएं। करना अभ्यास, बैठे बैठे ऐसे जैसे शरीर से आत्मा अलग हो, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। वो अशरीरी स्थिति का अच्छा अभ्यास अगर है तो कोई भी बात आई अचानक तो आत्मा ऐसे निकलेगी जैसे बाबा एक मिसाल देते, मक्खन से बाल निकाल लेते, कहीं भी टच नहीं करता, कोई पर प्रभाव नहीं आता। तो हम सब एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करें, क्या हम सब अपने आप को अंतिम समय के लिए, अचानक के पेपर में पास होने के लिए एवर रेडी हैं? कहीं पर भी किसी से भी सूक्ष्म में भी लगाव तो नहीं है, क्योंकि लगाव की निशानी झुकाव है, उसका प्रभाव है, उसके दबाव के अंदर आत्मा रहती है। और दूसरी ओर कहीं न कहीं किसी से टकराव, बहुत सूक्ष्म बंधन है, किसी भी संस्कार को देखते हुए, किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को देखते, जानते, समझते, उसके प्रति नफरत की भावना न बने, टकराव की स्थिति न आए, नहीं तो वो भी एक बहुत बड़ा बंधन बन जाएगा। तो बहुत सूक्ष्म रीति से हम सबको चेक करना है कि अंतिम काल में जो पेपर अचानक किसी के सामने आ सकते हैं, सबसे बड़ा पेपर हमारे सब दादियों के सामने आया, वो शरीर का पेपर है। लेकिन शरीर के पेपर में भी कभी भी उनके मुंह से ये नहीं निकला मैं बीमार हूं, मुझे कोई तकलीफ है। इतना स्वीट साइलेंस की स्थिति में रही, सदा चेहरे पर रुहाब था, रौनक थी, और बाबा की ऐसी स्मृति थी जो कभी अगर कोई कहे दादी कैसे हैं, बीमार हैं क्या, तबीयत ठीक है, मैं तो 100% ओके हूँ। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा हाँ मेरे को ये है, मेरे को ये है। एक बार दादी जानकी जी देहरादून की तरफ गई थी, कुछ चोट लग गई, गिर गई बिस्तर से, पसलियों में बहुत दर्द था, चोट लगी तो कमरे में लेटी हुई थी, तो मैं गया दादी के पास, दादी से दृष्टि ले रहा था, बहुत प्यार से दृष्टि दे रही थी, तो मैंने दादी को बोला दादी दर्द है, बहुत प्यार से बोलती है हाँ भाऊ दर्द तो है, दर्द तो है लेकिन दुख नहीं है। क्या दुख नहीं है, ये भी कोई हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, दुख की लहर नहीं चेहरे पर, दर्द की दवाई तो है लेकिन दुख की कोई दवाई नहीं है। इतनी स्टेज ऊंची थी कि वो जैसे हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा बाबा की प्यार में उस सुख की स्टेज में हूँ। बड़ी दादी को जब बॉम्बे से लेकर के यहाँ आए तो अपने कमरे में थी, और मैं बहुत समय से दादी की तरफ से पत्र लिखता था, तो मैं अचानक गया दादी के पास, दादी मेरे को एक संकल्प आता है कि मैं आपके नाम से अभी तक पत्र लिख रहा हूँ, पहले आप लिखा लेती थी या कहती थी लिख के ले आओ मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ करके आप हाँ कर लेती तो मैं आपके नाम से भेज देता था, लेकिन अभी 2 साल हो गए हैं, ना आप लिखाती हैं ना आप पढ़ती हैं, और मैं बहुत संकोच से आपका नाम डाल के पत्र लिखता हूँ। तो कहती है अरे तुमको दादी ने ही तो सिखाया है, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, तुम ऐसे ही लिखते रहो। ये दादी मेरे को आता है कि नहीं अभी छोड़ दूँ, बंद कर दूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। तो हमारी गुलजार दादी बहुत रमणीकता से अंदर प्रवेश हुई, आई दादी से मिलने आई, और हम दो ही थे, दादी और हम बैठे थे, तो दादी गुलजार दादी कहती है अरे आप दोनों क्या आज रूहरियान कर रहे हो, बड़ी गहरी रूहरियान चल रही है। तो मैं तो चुप, दादी कहती है अरे गुल देख आज इसको क्या हो गया, इतना अच्छा पत्र लिखता है, मेरे नाम से लिखता है, सब बड़े खुश होते हैं, और आज ये कहता है मैं पत्र नहीं लिखूंगा, आप लिखाओ तो लिखूंगा। दादी इसको बोलो ना लिखेगा तो अच्छा है। तो दादी बड़े मुस्कुराते हुए कहती है दादी कहता तो ये ठीक है, गुलजार दादी मेरी तरफ लिया कि कहता तो ये ठीक है, आपको लिखाना तो चाहिए। अब दादी चुप, जैसे बाबा बोल गया ना इसे गुलजार दादी से, अच्छा लिख। तो मेरे पास कॉपी पेंसिल थी तो मैंने उठाया और लिखना शुरू किया, मैंने लिखाइए। तो कहते लिखो, पहली लाइन दादी 100% ओके है। मैं नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा, दादी अभी तक मैं लिखता हूं लोगों को लगता है राजू भाई अपनी तरफ से लिखता है, और अगर ये लिखूंगा कि दादी 100% ओके है तो लोग तो और कहेंगे झूठा लिखा है। कहती क्या हुआ, मेरे कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ दादी, मेरे कुछ नहीं हुआ है दादी, अभी आप बिस्तर पर हैं, आपको ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, आप क्लास नहीं करा सकती हैं, चल भी नहीं सकती। आप कहते कहते ओके 100%। अरे ये तो कुछ डॉक्टरों का चक्कर है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और ये 19-20 शरीर पुराने हैं तो चलता ही है, मैं बीमार थोड़ी हूं, तुम लिखो 100% दादी ओके है। माना जरा भी बीमारी का भान नहीं, वो अशरीरी स्टेज है कि ये शरीर अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना काम कर रही है, आत्मा पर तो कोई रोग है ही नहीं। तो मेरे से लिखा या जबरदस्ती लिख, मैं ठीक है दादी और क्या लिखूं, कहते लिखो दादी इतना बड़ा ऐसे हाथ किया, इससे प्यार से भाकी पहन करके आप सबको बहुत दुआएं दे रहे, आपने हमारे लिए बहुत योग किया। फिर कहते रुको रुको ये नहीं लिखो, बाबा भाकी पहन सकता है गुलजार गुल, ये काम मैं थोड़ी कर सकती हूँ, तो बाबा कर सकता है ना भाकी पहनने का। तो दादी कहती गुलजार दादी साकार में तो आप बैठी हैं, बाबा तो अव्यक्त है, साकार में बाबा की सीट पर आप हैं, आप नहीं पहनेंगी तो कौन पहनेगा। ऐसी सुंदर चिटचैट थी, वो क्या दृश्य मैं आपको बताऊं। तो दादी ने कहा लिखो, गुलजार दादी ने कहा लिखो ये बात। तो ऐसे हमने बड़ों को देखा कि कोई भी प्रकार की बीमारी आई है, जरा भी उस पेपर को पेपर नहीं समझा, कोई शरीर का हिसाब किताब आया है पूरा हो जाएगा, एकदम ऊंची स्टेज पर रह करके अंतिम समय में जैसे ऐसा अभ्यास किया जो शरीर छोड़ने में जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुई। जब शरीर छोड़ रही थी तो हम सब डॉक्टर्स और हम सब भाई कुछ मधुबन के सामने खड़े थे, ऐसे धीरे 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 आंख ऐसे बंद की गई, सब जो भी मीटर्स लगे थे ना 0-0-0 हो गए, थोड़ी देर के बाद सब चालू हो गए। तो एकदम डॉक्टर ने बोला दादी तो वापस आ गई, तो एक जैसे वो लहर होती ना चली गई, और फिर 5 मिनट के बाद फिर मशीनें चालू हो गई। तो इतना खुशी हुई सबको कि दादी वापस आ गई, लेकिन फिर धीरे के 5-7 मिनट रही और फिर चली गई। इसका रहस्य फिर बाबा ने बाद में बताया कि दादी ने बाबा को जाके कहा बाबा अभी हमको क्यों बुलाया, अभी तो हम साकार में सेवा कर सकते हैं, अच्छा बच्ची जाओ सेवा करके देखो। तो जब आई तो शरीर काम का ही नहीं था, शरीर तो एकदम ठंडा हो रहा था। तो दादी आई, प्रवेश हुई और थोड़ी देर रही और फिर धीरे से निकल गई। ये प्रैक्टिस अशरीरी बनने का अभ्यास, अंतकाल में ऐसे शरीर से निकलेगी आत्मा जो कोई भी खींचेगा नहीं। इतने सब खड़े हैं, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी सब जवाबदारियां हैं, इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ देखते हुए भी जैसे कुछ नहीं, बाबा 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 अंदर अंदर की धुन से एक सेकेंड में उस पेपर में पास हो गए। तो एक तन का पेपर आता है, दूसरा संबंध, जिनको हमने संबंध समझा था वो सब बंधन बन गए कलयुग में, स्वार्थ के कारण, मेरे मेरे के कारण। और उन बंधनों में आत्मा इतनी बंधी हुई है जो उससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। जब तक किसी ने सर्व संबंध एक बाबा से नहीं जोड़े हैं तब तक हद के संबंधों से उसको वैराग्य नहीं आ सकता, कहीं न कहीं आकर्षित होती है आत्मा। इसलिए बाबा ने सर्व संबंधों से तुम मुझे पहचानो और याद करो, तो कहते तो थे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन सब तू ही है, अभी संगम पर तुम बच्चे इन सब संबंधों का अनुभव करके देखो, अपनी दिनचर्या में अपने उन अनुभवों को सेट करो, कैसे हम इन अनुभवों का फायदा उठाएं। तो जो हद के बंधन है, दैहिक बंधन है, संबंधों के बंधन है, उससे आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसमें वह रेडी बनो, ये पेपर आ सकता है, आर्थिक पेपर भी आ सकता है, प्राकृतिक पेपर भी आ सकता है, क्योंकि प्रकृति के सब तत्व अपना तमोगुणी रूप ले रहे हैं और उस तमोगुणी रूप में सब साधन होंगे, खाने पीने के सब साधन होंगे लेकिन खाने योग्य नहीं होंगे, जहरीले हो जाएंगे। क्या ऐसे समय में ऐसा कोई पेपर आ जाए उसमें ऐसा बाबा से संबंध है, ऐसी हमारी अनासक्त वृत्ति है जो उस पेपर में बाबा के पास जाए और बाबा वतन में खिला दे, कोई भी चीज आकर्षित न करे। एवर रेडी है, परीक्षाएं तो आ सकती है ना, कलयुग है, अंतिम समय है और हर क्षेत्र में अति हो रही है। जो भी हमारे पिछले रहे हुए हिसाब किताब हैं, किसी तरह से कोई गलत लेन देन हुई है, वो सब हमारे सामने आएंगे, चुकतु होंगे। क्या ज्ञान और योग की शक्ति से उन सब पेपर्स में हम पास हो सकते हैं, इतना हमने ज्ञान और योग को यथार्थ समझा है? एवर रेडी है, अचानक पेपर आ जाए, आया है, हाय हाय ना करें, क्वेश्चंस में ना ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्यों आ गया, कैसे आ गया, कहां से आ गया, कहीं तो व्यर्थ की ऐसी क्यों लगा देते हैं जो उसी में उलझ जाते। आया है, कुछ तो किया होगा तब तो आया है। बहुत प्यार से, बाबा की याद से, सबकी दुआओं से उस पेपर को बहुत सहज पास किया जा सकता है। इसलिए इस समय एवर रेडी रहने वाले ध्यान देना, हम सबके पास दुआओं का बहुत अच्छा स्टॉक चाहिए। पेपर में पास होना है तो अचानक पेपर आएगा और हमने अगर ब्राह्मण परिवार में अपने माता पिता की सबसे बड़ी दुआएं तो हमारे माँ बाप की हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की हैं, फिर हमारे बड़ों की, हमारे साथी संगठन की, इस अलौकिक परिवार की सब की दुआएं मिल रही हैं, जमा है स्टॉक में, चेक करना, तब कहना ये रेडी हैं, आएगा पेपर हम पास कर लेंगे बहुत सहज रीति से। इसलिए जब भी दादियों से बात करो, बड़ों से बात करो, यही कहते ये पेपर आया ना, सबकी दुआएं हैं, मैं पास हो जाऊंगी, कोई तकलीफ नहीं मुझे, सबकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। इतना दुआओं का स्टॉक जमा किया और अभी तक भी अगर कोई किसी को दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, छोटी छोटी बातों में मूड खराब कर रहा है, असंतुष्ट हो रहा है, असंतुष्ट कर रहा है, तेरे मेरे के बंधनों में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, दुआएं कहां से मिलेंगी? इसलिए सब ध्यान देना, अगर हम सब जानते और समझते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो क्या हमारे पास ऐसा दुआओं का स्टॉक है जो उस अंतिम पेपर में हम पास हो जाएं, और साथ साथ पुण्य की इतनी पूंजी जमा है जो हमारा भविष्य सुहेला हो जाए, अच्छा हो जाए, भविष्य की चिंता न करना पड़े, पता नहीं क्या होगा, हमने अपनी सारी गुप्त पूंजी पुण्य की जमा की है। जमा की है सभी ने, जो समझते हैं हमारी पुण्य की पूंजी जमा है, हाथ उठाओ, देख करके सोच करके उठाना, पुण्य की पूंजी जमा है, बहुत गुप्त दान महापुण्य, जिसने कोई भी सेवाएं की है, तन की, मन की, धन की, बुद्धि से, जो बाबा के यज्ञ में कार्य किए हैं, अगर उनको बहुत गुप्त किया है, किसी के आगे दिखाया नहीं है, किसी के मान शान नाम की इच्छा नहीं रखी, जो बाबा का एक शब्द आता है मुरलियों में, नेकी कर दरिया में डाल, जो अच्छे काम बाबा ने कराए हैं, बाबा शुक्रिया आपका, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करता तो जैसे यज्ञ नहीं चलता, वो जो अहम भाव है वो पुण्य की पूंजी जमा करने नहीं देता। इसलिए बहुत गुप्त रीति से ब्रह्मा बाबा जो नर से श्री नारायण बने, उसका एक मूल कारण बाबा कई बार सुनाते हैं मुरली के अंदर कि बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, बाबा करता या मेरे बच्चे करते। लेकिन नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, तो जरूर कुछ करनी की है तब तो श्री नारायण पद पाते हैं। लेकिन उस करनी का कहीं पर भी उन्होंने खुद वर्णन नहीं किया। श्री बाबा ने कभी वर्णन कर भी दिया हो देखो ब्रह्मा ने क्या किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी न माला स्वीकार की, न फूल स्वीकार किए, न फोटो निकालने दिए, न कोई किसी की वस्तु स्वीकार की। वही पुराना घर छप्पर वाला तीन सीट वाला लास्ट तक भी उसी पुराने स्थान पर रहे और तपस्या की। अरे बाबा ने बच्चों ने ऑफर किया, बाबा यहाँ पर पानी टपकता है, ठंडी पड़ती है, आप दूसरे स्थान पर आ जाओ। नहीं नहीं बच्चे, शिव बाबा इस पुरानी जुत्ती में आता है, मैं इसी पुराने स्थान पर रहूंगा। कभी कोई चीज स्वीकार नहीं की। हर साधन सुविधाएं होते हुए भी ऐसे नहीं थी, आ गई थी। हवाई महल बन गया था पांडव भवन में, बहुत सुंदर स्थान बना था, ये बच्चों के लिए है, बाबा तो इसी कुटिया में इसी झोपड़ी में रहेगा। साधना के लिए साधन आवश्यक हैं, होने चाहिए, और हैं ही साइंस के साधन अपने लिए। लेकिन मान लो कोई साधन अचानक कुछ खराब हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या हमारी साधना टिक सकेगी? या साधन हो तो योग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बिजली हो तो माइक चलेगा, जरूरत है इतने लोगों के लिए बिजली होना, माइक चलना। लेकिन कहीं पर भी साधन अगर चले जाएं, खराब हो जाएं, बंद हो जाएं, तो हमारी साधना में रुकावट ना आए, उसमें हम एवर रेडी बने हैं, यूज कर रहे हैं, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अधीन हो करके नहीं, अधिकारी बन करके। कई बार बाबा कहते हैं अपनी सीट पर सेट हो करके फिर शक्तियों को आर्डर करके देखो। अभी सहन करने की शक्ति चाहिए, अभी सामना करने की शक्ति चाहिए, अभी समेटने की शक्ति चाहिए, अभी समाने की शक्ति चाहिए। क्या ये शक्तियां आर्डर प्रमाण आती हैं? एवर रेडी हो? जरूरत है अभी सहन करने की, और हमको जोश आ जाए, उत्तेजना आ जाए, तुरंत बोल दें, तो क्या सहन शक्ति आई? इसलिए सब अपने आप को चेक करके अपने आप को एवर रेडी बनाओ, क्योंकि अंतिम समय में हर प्रकार की परीक्षाएं बिना पूछे अचानक किसी के सामने भी आ सकती हैं। सब कुछ संभव है, किसी के सामने भी कोई आ सकती, मानसिक भी आ सकती, आर्थिक भी आ सकती, शारीरिक भी आ सकती, पारिवारिक भी आ सकती, प्रकृति के द्वारा भी आ सकती, कभी भी आ जाए। लेकिन हमने इतना बाबा के साथ संबंध रखे हैं, शक्तियां ली हैं, कनेक्शन जुटा हुआ है, जो कोई भी परीक्षा आएगी बाबा के हाथ और सांस से उसको हम सहज पार कर लेंगे, तब तो कहेंगे एवर रेडी है। नहीं तो ऐसे को हम तो एवर रेडी हैं भाई, वो तो कहने तक सीमित हो गया। एवर रेडी है तो देखना, ध्यान देना कि हम परीक्षाओं में बहुत सहज पास हो जाएंगे, पास विधानर होंगे या नंबर कौन सा रहेगा। दूसरी बात, एक है परीक्षाएं, दूसरा मान लो आज बाबा जो कहता है प्रत्यक्षता होगी, और जब प्रत्यक्षता होगी तो न योग करने का समय रहेगा, न बैठने का, न सोने का, क्योंकि जय जयकार आ गया, यही है, यही है, यही है। तो प्रत्यक्षता में जो भक्तों की आत्माओं की लाइन लगेगी, क्या उन सब के लिए हमारे पास इतना सब स्टॉक जमा है कि हम नजर से निहाल कर सकें, अपनी शुद्ध भावनाओं से भी उनको प्राप्ति करा सकें, कुछ दे सकें? ऐसे संपन्न स्वरूप में बाबा के जो खजाने हैं सब अपने अंदर भरपूर किए हैं, इसमें वह रेडी है? मान लो आज ही प्रत्यक्षता हो जाए, क्योंकि विनाश ऐसे तो नहीं होगा, विनाश के पहले प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगी। लेकिन जय जयकार में कहीं हाय हाय तो नहीं करेंगे हम, हाय मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, हमने बाबा को पहचाना ही नहीं, हमको इतने चांस होते हुए भी हमने नहीं लिए, हम तो कुछ सफल ही नहीं कर पाए, तो सब ऐसे ही जा रहा है, पश्चाताप तो नहीं होगा? क्योंकि जहां पर प्रत्यक्षता हुई वहां पर एक तरफ जय जयकार के साथ खुशी में बाबा एक शब्द यूज करते हैं कभी कभी कोई कोई मुरली में, मेरे बच्चे घुंघरू पहन के डांस करेंगे, लेकिन दूसरी ओर मेरे बच्चे ही सबसे ज्यादा पश्चाताप करेंगे, जो अलवेले रहे, जिन्होंने श्रीमत में मनमत मिक्स की, जो कहीं न कहीं अवज्ञाएं करते रहे, अपनी चलाते रहे। आज एक फोन आया मेरे पास, एक भाई यहां से दिसंबर में होके गया, और जब से यहां से गया बस शिव बाबा मेरे में आता है, शिव बाबा मेरे में आता है। इतना विपरीत बुद्धि बन जाती है आत्मा, न बाबा का ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा है, न दादियों से को दीदियों को कुछ अधिकार देता है, बस मैं ही सब कुछ हूं, अहम भाव आ गया। इतनी जबरदस्त माया अटैक करती है, ऐसी आत्माएं जो मनमत चला रही हैं, मनमौजी हैं, पश्चाताप नहीं होगा? बहुत पश्चाताप होगा, और वो पश्चाताप की घड़ियां इतनी दुखदायी हैं जो बाबा कहता मेरे से भी सहन नहीं होगा, भगवान से भी सहन नहीं होगा, क्या करेगा? तब परिवर्तन होगा, वो तीसरी स्टेज आएगी, पहले परीक्षाएं, फिर प्रत्यक्षता, और उसके बाद परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है सृष्टि का, इतनी बड़ी महापरिवर्तन के समीप हम पहुंचे हैं, इतना सारा देखो कितना विस्तार हुआ है कलयुग में, कितने साधन, कितनी सुविधाएं, किसी बड़े शहर में पहुंच जाओ ऐसे लगता है सारे सब लोग घरों से निकल के बाहर ही रोड पर घूम रहे हैं, इतनी गाड़ियां, इतने लोग, इतनी ट्रैफिक, उसके बीच में ऐसे लगता पता नहीं कहां फंस गया करके, इतनी वृद्धि, इतना विस्तार, हर साधन सुविधाएं, मोटर गाड़ियां, मकान, ये वो बढ़ता जा रहा, और सब एकदम ऐसे पलटेगा, ऐसे परिवर्तन। क्या उस महाविनाश के लिए हम रेडी हैं? देखने के लिए इतनी शक्तियां जमा की हैं, जो कोई भी दृश्य देखते हुए साक्षी दृष्टा बन जाए, हाय चला गया, हाय चला गया, सबका ही जाएगा ना, ऐसे नहीं उसका जाएगा मेरा नहीं जाएगा। जिसके पास जो कुछ है, अगर उसने सफल नहीं किया, अगर उसने श्रेष्ठ कार्य में लगाया नहीं है, तो जाएगा ही। इसलिए सब बाबा के बच्चों को बहुत गुप्त रीति से चेक करना है कि क्या मैंने सब कुछ सफल कर लिया है। अगर समय समीप है, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी चीज छिपा करके तो नहीं रख दी है? अधिकतर जब अंतिम समय आता है अचानक, तो दो जगह बुद्धि भटकती है। एक तरफ धन साधन सुविधाएं जो छिपा के रखी है, कहीं बैंक में रखी, कोई जमीन में रखी, कोई दीवालों में रख दी, और शरीर छूट गया अगर आत्मा का अचानक, तो कहां बुद्धि जाएगी? उसी जगह घूमेगी आत्मा, उसको मुक्ति जल्दी नहीं मिलती। जब इस देश पर मुगलों ने, दूसरों ने आक्रमण किए, तो बहुत संपत्ति थी, भारत तो सोने की चिड़िया था, और जो इतनी जेवरात, सोना चांदी था, संपत्ति थी, वो सब लोगों ने नीचे इधर उधर मंदिरों में, जमीनों में दबा दी, और अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो आज तक भी उस संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा पाता है, सांप वहां घूमते हैं, कहां से आए सांप? क्योंकि वो आत्मा उस धन में इतना फंसी हुई थी, जो उसको मुक्ति नहीं मिली। इसलिए बाबा कहता बच्चे जो कुछ है, अचानक कुछ भी हो, उसके पहले सोच लो क्या मेरा सब कुछ सफल हो गया है, हमने किया है यज्ञ में बाबा के नाम पर, इंश्योर कर दिया है, इंश्योर्ड किया है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ी है बाबा की, अगर इंश्योर कर दिया है तो ट्रांसफर हो जाएगा, सत्युग में मिल जाएगा, और अगर इधर उधर छिपाया हुआ है, रखा हुआ है, नहीं सफल कर पाए, तो अंत मति सो गति, आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी, उधर भटकेगी। इसलिए वर रेडी, सफल करो, सफल करो और जो कुछ है उसको समेट लो, विस्तार को समेटो। अभी विस्तार करने का समय खत्म हो गया था, हुआ विस्तार और सेवाओं का विस्तार अभी भी हो रहा है। बाबा कहता होने दो उसको, लेकिन अपनी स्थिति को सार स्वरूप बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में बिल्कुल सार स्वरूप, मकान बन रहे हैं, बहुत सारी जवाबदारियां हैं, बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएं, सब बाबा को फिक्र आते, लेकिन अंदर गुप्त पुरुषार्थ करते हुए भी अकड़ता। दादी को ट्रांसफर किया और खुद हल्का हो गया, न्यारा हो गया। तो हम सब बाबा के बच्चे चेक करें, एक धन के पीछे बुद्धि जाएगी और दूसरी संबंधों में जाएगी। जिस संबंधों में जरा भी अटैचमेंट होगी, शरीर छूटते वो आत्मा उसी के पीछे आगे घूमेगी, भूत बन करके नाचेगी, उसको छोड़ेगी नहीं, छोड़ नहीं पाएगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सबसे छुट्टी ले लो पहले, जीते जी, किसी देहधारी में, किसी धन, किसी साधन, किसी संबंध में, किसी संस्कार में बुद्धि लटकी और अटकी नहीं है, तो अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे और हम सब कहेंगे बाबा अब कुछ भी हो जाए हम एवर रेडी हैं। तो तीन प्रकार का समय है, एक परीक्षाओं का, एक प्रत्यक्षता का और एक अंतिम परिवर्तन का। तो सभी एवर रेडी हो, नहीं तो बहुत महीन रूप से चेक करना, क्योंकि चेक करके कभी कभी कोई ब्राह्मण आत्माएं बड़ी जल्दी निराश उदास हो जाते। बाबा कहते बच्चे निराश नहीं हो जाओ, चेक करो और चेंज करो, बाबा का साथ लो। कभी अपनी कमजोरी भी होती है तो बाबा बहुत अच्छा एक शब्द देते हैं, बच्चे अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो आपका साथी तो सर्वशक्तिमान है ना, उसको साथ ले लो, बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। और ये जो छोटी मोटी बातें आ रही हैं, पेपर्स आ रहे हैं, बाबा के साथ और हाथ से हम इसको सहज पार कर लेंगे। श्रीमत का हाथ सदा सिर पर रहे, श्रीमत सिर माथे, कोई भी मनुष्य की मत श्रीमत नहीं कहलाती, चाहे जितनी भी बड़ी हो। श्रीमत केवल मुरली में है और हम अगर बाबा की साकार अव्यक्त मुरलियों को ध्यान से स्टडी करते हैं तो हर प्रकार की मत बाबा ने दी है, अमृत वेले से रात्रि तक, हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए भी बाबा ने सब कुछ श्रीमत सिखाई है, बताई है। और जो ब्राह्मण आत्माएं सदा श्रीमत प्रमाण चलती हैं, उसमें जरा भी अपनी मत या दूसरों की मत को ऐड नहीं करती, वो कह सकती हैं हम तो बाबा एवर रेडी हैं, हमने अपना तन मन धन समय जो शक्तियां थी सब सफल की हैं, हमने अपनी बुद्धि को सब विस्तारों से निकाला है, हम सार स्वरूप स्थिति में रहते हैं, हमने अपनी स्थिति वॉइसलेस बनाई है, अंतिम समय आएगा तो हम आपकी सेवा में मददगार बनेंगे। ऐसे बच्चों को बाबा कहता है एवर रेडी है। बहुत गहरी बातें हैं इसके अंदर और इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कहीं पर भी बहुत काल तक अगर बुद्धि है तो अंत काल में बुद्धि उधर ही जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुना के बोलता हूं, बताता हूं, पूरा कर। 6:30 हुआ, दीदी आने वाली, मोहिनी दीदी कहते हैं एक व्यक्ति बड़े समझदार थे, उन्होंने सुना था कि कलयुग के अंदर सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी मुक्ति मिल जाती, सदगति हो जाती। तो उन्होंने सोचा मरने के समय तो बच्चे ही सामने होते हैं, वही याद आते हैं, तो उनको 3 बच्चे हुए, उन्होंने भगवान के नाम पर उन बच्चों का नाम रख दिया। एक का रखा श्री कृष्ण, एक का रखा मोहन, एक का नाम रखा राम, कि इनके नाम लेने से मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे ही सोए हुए थे, अचानक मौत का समय जब आया तो सब बच्चे, सब परिवार इकट्ठा हो गया कि तो जाने वाला है, डॉक्टर ने बोल दिया जाएगा अभी। तो एक एक को याद करने लगे, राम कहाँ है, खड़ा हो गया, बाबूजी मैं तो आपके सामने हूँ। मोहन कहाँ है, वो भी खड़ा हो गया। कृष्ण किधर है, वो भी खड़ा हो गया। जब तीनों को ऐसे देखा, तीनों सामने खड़े हैं, तो अंदर से बहुत जोश में बोलता है, तुम तीनों यहाँ खड़े हो तो दुकान में कौन है? क्या हुआ? वो दुकान शब्द कहते उसको जोश में आत्मा निकल गई, तो अंतमती सोगति क्या हुई? बहुत काल से जिसमें ध्यान था वही अंत में याद आया। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे बहुत काल से बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे संकल्प के साथ अगर बाबा को हर संबंध से याद करेंगे, हर श्रीमत का दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, अपनी बुद्धि को बिल्कुल हल्का करके, हर बंधन से मुक्त बन करके बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम अंतिम पेपर को सहज क्रॉस कर लेंगे। हम एवर रेडी हैं, बाबा कुछ भी करो हम तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करो। अब 90 साल तो शिव जयंती को हम मना रहे हैं, 90 वर्ष तो यज्ञ को पूरे हुए, अभी कितना समय और चलेगा। इसलिए सब एवर रेडी रह के बाबा को कहो, बाबा आप कभी भी बटन दबाओ, हम तैयार हैं। के ओम शांति।
कैसे बतलाए वरदान लुटाने वाले सद्ज्ञान सुनाने वाले।
शांति। आदरणीय राजू भाई साहब का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, जो अचानक और एवर रेडी कैसे बने इस पर आपने बहुत सुंदर क्लास कराया। आप सभी भी बैठे रहेंगे।